ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस से डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे खतरों से उत्पन्न चुनौतियों को अवसर में बदलने को कहा है। उन्होंने पुलिस से कहा है कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आकांक्षी भारत में देश की शक्ति का दोहन करें। श्री मोदी कल ओडिशा के भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन के समापन दिवस को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 दिन के सम्मेलन के दौरान सुरक्षा चुनौतियों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयामों पर व्यापक चर्चा की गई। उन्होंने चर्चाओं से उभरी जवाबी रणनीतियों पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने पुलिस बल के कार्यभार को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग का आह्वान किया। उन्होंने पुलिस से विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाने और अपने दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने को कहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान करेंगी। कुल 22 व्यक्तियों और 11 संस्थानों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार इस अवसर पर दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए पूर्ण और बिना शर्त समर्थन दोहराया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला आज किया जाएगा। रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस सांसदों से कहा है कि वे पंजाब के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने के बारे में सीबीआई जांच की मांग करें। श्री बिट्टू कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के निरीक्षण के सिलसिले में कल जालंधर में थे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब को 44,000 करोड़ रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में भेज चुकी है। श्री बिट्टू ने कहा कि विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन की आधुनिक इमारत का लोकार्पण अगले वर्ष अप्रैल तक कर दिया जाएगा। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई से इस वर्ष अक्टूबर में 16,58,00,000,000 वित्तीय लेनदेन हुआ है। केवल एक महीने में यूपीआई से इस लेनदेन में लगभग 23,49,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। पिछले वर्ष अक्टूबर की तुलना में ये 45% अधिक है। मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन आज सऊदी अरब के रियाद में शुरू हो रहा है। पहली बार पश्चिम एशिया इस महत्वपूर्ण पर्यावरणीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। भारत इस संधि की 30वीं वर्षगांठ पर आयोजित सम्मेलन में शामिल होगा। ये सम्मेलन 13 दिसंबर तक चलेगा तथा विभिन्न देशों की सरकारों, व्यवसायियों और नागरिक समाज को स्थायी भूमि प्रबंधन पर सहयोग समन्वय का वैश्विक मंच उपलब्ध कराएगा। जलवायु परिवर्तन से निपटने के भारत के प्रयास पूरे विश्व के लिए संभावित मॉडल का काम कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की कोलकाता शाखा ने अंतर्राष्ट्रीय शांति संगठनों पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों और अत्याचारों के प्रति उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता राधारमण दास ने कहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर से इस मुद्दे पर कड़ा बयान जारी करने का अनुरोध किया। संयुक्त राष्ट्र सहायता एजेंसी ने कहा है कि सुरक्षा कारणों से वे इसराइल और गजा के बीच मुख्य क्रॉसिंग से फिलिस्तीनियों को सहायता आपूर्ति फिलहाल रोक रही है। फिलिस्तीन शरणार्थियों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी प्रमुख फिलिप लाजारी ने कहा है कि केरम शालम क्रॉसिंग के पास सशस्त्र गिरोहों ने हाल में राहत सामग्रियों के 2 काफिले लूट लिए थे। इन्होंने इसराइल से कानून व्यवस्था बनाए रखने का भी आग्रह किया। ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी शतरंज में प्रतिष्ठित 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। इससे पहले विश्वनाथन आनंद ने ये उपलब्धि हासिल की थी। 21 वर्षीय एरिगेसी वर्तमान में विश्व रैंकिंग में भी 4थे स्थान पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज परिसंघ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अर्जुन विश्व शतरंज रेटिंग में 2800 एलो बैरियर पार करने वाले 16वें खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।